السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی توفیق سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 سے 123 تک کریں گے. ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے آیت 47 48 اور یہ آیت نمبر 122 اور 123 جو ہیں یہ ملتی جلتی ہیں. یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے بات شروع ہوئی اور یہاں تک جو آج ہمارا لیسن ختم ہوگا وہاں تک بات ختم ہوئی. اس کے بیچ میں تمام بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ذکر بھی اس حوالے سے ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی کیا جرائم تھے، کس وجہ سے وہ مغضوبی علیہم ہوئے. اور آگے چونکہ ہم نے سیکنڈ پارا بھی شروع کرنا ہے جس کے اندر سورہ بقرہ میں یہ آئے گا کہ ان سے اب امامت لے لی گئی اور اب امت مسلمہ کو دے دی گئی، تو اس کی وجہ کیا ہے، ان کے کیا قصور تھے. اللہ تعالیٰ یاد رکھے، کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. کچھ بھی ہو جائے کسی کے ساتھ، یہ ذہن میں آپ کے ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظلام للعبید نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جس سے کوئی نعمت چھینی گئی، یعنی ایک بہت بڑی فضیلت تھی جو ان کو ملی ہوئی تھی دنیا میں، امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، اب وہ اتنا بڑا مقام جو ان سے واپس لیا گیا، تو کیا وجہ تھی، ان کے کیا قصور تھے، انہوں نے کیا کیا تھا. مسٹ بی سم تھنگ، اور کس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا مقام ایسا بنا لیا کہ یہ مغضوب علیہم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان کے اوپر، ٹھیک ہے، لعنت ہوئی ان کے اوپر. اور اس کے اندر میسج بھی ہے امت مسلمہ کو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، یہی کام تھے جو ان کے اندر ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اتنا ان کے اوپر غصہ ہو گیا کہ لعنت کر دی گئی ہے ان کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، تو کوئی تو قصور کیے ہوں گے. اب وہ چیزیں بہت دھیان سے اس لیے پڑھنی ہے کہ ہم کہیں انہی چیزوں میں انوالو نہ ہو جائیں. جیسے ماں باپ اپنے بچے کو کسی چیز سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا فلاں نے ایسا کیا اور تم نے ایسا نہیں کرنا، دیکھو اس نے ایسا ایسا کیا، اور پھر دیکھو وہ کتنی مشکل کے اندر پھنس گیا. آپ اپنے بچے کو ایسے نصیحت کرتے ہیں، وہ ایسا ایک بچے نے کیا اور وہ اس طرح ہوا، تم اگر ایسا کرو گے تو دیکھو کہیں تم بھی اس چیز کے اندر نہ پڑ جاؤ. تو امت مسلمہ کو یہ ساری باتیں ایسے ہی نہیں بتائی جا رہی ہیں قرآن میں ایسے، اب ہمیں کیا اس سے، وہ جو بھی کرتے ہوں گے ہم کیا جانیں، ہم اپنا کام کریں، نہیں بلکہ ہمارے اندر، ہمارے لیے بہت زیادہ اس کے اندر میسج ہے، بہت زیادہ سبق لینے کی باتیں ہیں، بہت ساری عمل کی باتیں ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، آپ نے عمل کی باتیں نوٹ کرتے جانا ہے، ہر آیتوں کے اندر کچھ نہ کچھ عمل کی باتیں ہوں گی، اس کو ہائی لائٹ کریں، نیچے لکھا کریں آیت کے عمل کی باتیں، اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کریں تاکہ جب آپ پڑھیں دوبارہ تو آپ آیت کی آپ کو سمجھ آ بھی گئی ہے. اگر عمل کی بات ہی نہیں پتہ تو آپ کے لیے تو ارریلیونٹ ہو گئی نا، آپ کیا سوچیں گے میں اسے کیا کروں. ہوگی کوئی ہسٹری میں ایسی قومیں گزری ہیں اور تو انہوں نے اگر ایسا کیا تو میرا اس سے کیا تعلق ہے، نہیں. اس لیے ہمارا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی ان کو ایسے ہی فالو کرو گے کہ جیسے اسٹیپ کے اوپر اسٹیپ کوئی رکھتا ہے نا، ایک نے کہیں چلا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اسٹیپ رکھتا ہے، اسی طرح تم ان کو قدم بقدم فالو کرو گے، حتیٰ کہ अगर वो गो के बिल में भी घुसेंगे तो तुम उनके पीछे उसमें ही चले जाओगे। अहले किताब के लिए खास तौर पे कहा था। और जैसे एक जूता दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होता है, इसी तरह तुम उनके साथ सेम हो जाओगे। इसलिए बहुत ज्यादा प्रिवेंशन के लिए, इस चीज से बचाने के लिए हमें ये बातें बताई जा रही हैं कि कहीं तुम ऐसा ना कर बैठना जैसे कि वो करते थे। उन्होंने जो गलतियां की उनको मत रिपीट करना, कहीं तुम भी अल्लाह ताला की निगाहों से गिर ना जाना। और इनसे खबरदार भी किया गया, वॉर्न भी किया गया कि इन जब इनके इस तरह की ये चीज़ें होंगी तो फिर तुमने क्या करना है। देखिए हर जगह सोल्यूशन भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा बात उनकी बता के फिर अब आपने क्या करना है इसके रिएक्शन में वो बताया ना जाए। जैसे अब वो राय ना कह के इस तरह से करते थे तो उसका सोल्यूशन भी दिया गया कि तुम मंजूर ना कहो, तुम वो वर्ड्स ना करो। ऐसे नहीं कहा गया कि ये बस ये गलती है तो अब इसका तुमने क्या करना, उसका बताया ही नहीं गया, ऐसा नहीं। अब हमें इससे भी सबक मिलता है ना कि जब हम भी अपने बच्चों को कुछ समझाएं तो उनको ऑल्टरनेट भी दें, ये चीज़ नहीं करनी तो फिर ये करनी है, ये भी बताएं, गेम ऐसी नहीं खेलनी तो ये वाली गेम खेल सकते हैं। तो देखते हैं आज की आयात। वद्दा कथीरु मिन अहलिल किताब, बहुत ज्यादा चाहते हैं, बड़ा यानी उनकी डिजायर है, बहुत ज्यादा उनके अंदर ये डेस्परेटली चाहत है। कथीरुन, बहुत सारे, मिन अहले किताब, अहले किताब में से, लव यरुद्दूनकुम, काश वो लौटा दें। क्या चाहते हैं कि काश वो लौटा दें, फेर दें, मिम बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद तुमको किसकी तरफ फेर दें, कुफारा, काफिर बना के तुमको काफिर बना दें, यानी तुम्हें कुफर की तरफ वापस लौटा दें। ये वो बहुत ज्यादा चाहते हैं। और पीछे हमने बात पढ़ी थी कि कसरत सवाल से मना किया गया, ये यहूद की आदत थी, बनी इसराइल की बहुत ज्यादा सवाल किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पिछली कौमें इसकी वजह से तबाह व बर्बाद हो गई कि वो कसरत सवाल करते थे, बहुत सवाल करते थे। और सवालों का भी मकसद क्या, उलझा देना दूसरे को। ये नहीं कि भाई वो कुछ इल्म लेना चाहते थे, बल्कि उलझाने के लिए, दूसरे को कंफ्यूज करने के लिए, मीन मेखे निकालने के लिए। देखें एक सवाल होता है जैसे आप सीखने के लिए कहते हैं कि भाई विरासत में क्या ये इस तरह से है, इसका मुझे समझा दें। एक ये क्या बात हुई, जैसे को मैंने बताया कि भाई अगर जो सवाल पूछ रही थी उसके बोला कि एक बेटी है वो फौत हो जाते हैं तो फिर क्या उनकी बेटी को सारा मिल सकता है। मैंने कहा नहीं, वो आधा मिलेगा उसको। अब उनको बहुत परेशानी हुई, कहते ये क्या बात हुई, उसको क्यों आधा मिलेगा और उनको क्यों मिलना चाहिए जो दूसरे वरासा हैं। तो नहीं, हमारा एक सवाल जो करने का अंदाज है वो ही बता देता है कि हमारे सवाल में एतराज है या उसके ऊपर डिसकंफर्ट है और उसके ऊपर हम मुतमईन नहीं है। जिस सवाल करने का अंदाज है ना उसके अंदर ही छुपा होता है। ये क्या बात हुई कि आदमियों को चार शादियों की इजाजत है, ये क्या बात हुई कि हूरे आदमियों को मिलेंगी जन्नत में। अभी ये देखिए ना, ये आप सवाल नहीं कर रहे, ये आप असल में इतराज कर रहे हैं। ठीक है, तो असल में इसका मोटिव क्या है, इसके पीछे क्या है कि काश तुम ना अपना ईमान छोड़ दो और वापस काफिर बन जाओ। इन सवालों का भी ये मकसद है। एक किसी तरह इनको ऐसा कर दिया जाए, बदजन कर दिया जाए। और आज के दौर में तो ये बहुत ज्यादा है, और इसके लिए अगर आप सोशल मीडिया पे देख लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे सवाल, खासतौर पे हमारे यूथ होते हैं, उसमें नौजवान नस्ल है जिनको कोई इल्म नहीं, अपने दीन का इल्म हासिल ही नहीं किया। अब जब उनसे पूछा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से इतनी वे छोटी उम्र की थी उनसे शादी कर ली, ये कैसी बात है, और ऐसे, अब वो एकदम कंफ्यूज, अब उनके पास जवाब नहीं है। और लौंडियों के साथ ताल्लुक कायम करना, ये क्या बात हुई, ये तो अजीब बात है तुम्हारे इस्लाम में ये है। और जिहाद के ऊपर ऐसी बातें करना, ये तो मरने मारने का कहते हैं। तो अब वो बच्चे परेशान होके फिर क्या हो जाता है, वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके दिल के अंदर अपने दीन के बारे में ही डाउट्स आने लगते हैं। और मकसद क्या होता है इनको दीन से हटाना, वो सवाल नहीं होते, वो हटाने का तरीका होता है। जब ऐसे बदजन कर देंगे उनको दीन से, तो क्या होगा? नतीजा यही निकलेगा कि वो दीन को ही छोड़ देंगे। लिहाजा आज के दौर के अंदर देखिए, अमल की बातों में ये है कि हम अपने दीन का इल्म लें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे और आज भी पूरा जोर लगा रहे हैं, और ये मीडिया पे भी बैठे हुए हैं और कई यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स भी हैं। कई बच्चों के बारे में पता चला कि वो यूनिवर्सिटी वगैरह में गए, उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया, प्रोफेसर ने ऐसी ऐसी बातें की, बच्चा इतना बदजन हो गया उसने दीन ही छोड़ दिया। ऐसी बातें हम रोज सुनते हैं। उसने फिलॉसफी पढ़ी, उन्होंने पता नहीं क्या बातें ऐसी की क्लास में कि जो बच्चे के जहन के अंदर ऐसी बैठ गई कि वो इस्लाम को नहीं अब लेना चाहता। इनकी तो पूरी कोशिश है कि तुम्हें काफिर बना दें फिर से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, ऐसा दौर आएगा कि सुबह को मोमिन होगा एक बंदा और शाम को काफिर हो जाएगा, ऐसे दीन चला जाएगा। इसकी वजह क्या है? हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, हसद की वजह से। इतना हसद है, और हसद क्या चीज होती है कि किसी की नेमत बर्दाश्त ना हो सके। जब इंसान के अंदर बहुत गुस्सा होता है ना, तो वो गुस्से को अब निकाल तो सकता नहीं, क्या करे? जब गुस्सा अंदर ही अंदर पकता है तो उससे कीना जन्म लेता है, और कीने से हसद आता है। इसीलिए कीना रखने को इतना ज्यादा मना किया गया, कीना मत रखो किसी से। वो जो अंदर इल फीलिंग होती है ना, वो अंदर मत, दिल के अंदर पैदा होने दो। पैदा हो गई है, उसको हटाने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हसद। उनको हसद क्या था? बस उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। उस जमाने में तो यही हसद था, उनसे नहीं बर्दाश्त होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत क्यों मिल गई, कुरैश में क्यों चली गई, अरबों में क्यों चली गई, बनी इसराइल में क्यों नहीं आई। तो हसद क्या है असल में? दूसरे की नेमत के जवाल की ख्वाहिश, कि दूसरे से नेमत छिन जाए। एक चीज होती है कि किसी की नेमत आपने देखी तो आपके दिल चाहता है कि अल्लाह तआला मुझे भी ये दे दे। आपने किसी के बहुत इल्म वाला देखा, किसी को बहुत नेकी करते देखा, तो आपका दिल करता है या अल्लाह मुझे भी ये नेमत अता फरमा। और अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला जिसको जो चाहे अता फरमाए, ये अल्लाह ताला का फजल होता है। अब आप अल्लाह ताला का फजल मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक, अल्लाह मैं तेरे फजल में से मांगता हूँ, तूने इसको दिया अल्लाह मुझे भी अता फरमा। मैं किसी की खूबसूरत किरात सुनी, या अल्लाह मुझे भी इस तरह तौफीक दे कि मैं भी ऐसे पढ़ सकूं, मुझे भी इस तरह से आ जाए। लेकिन एक है, अरे इसको क्यों ऐसा इतना आ गया, इसको लोग इतना पूछते हैं, इसकी तारीफें हो रही हैं, और अंदर जलन कुड़न। उनको जलन कुड़न ये थी, हालांकि मिम्बादी मा तबय्यना लहुमुल हक, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, हक उनके ऊपर वाजे था, वो जान चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन हसद की वजह से वो मानते नहीं थे। यानी हसद इंसान को कहाँ तक ले जाता है, ये हसद का नतीजा होता है कि इंसान खैर से महरूम हो जाता है। कितनी बड़ी खैर से महरूम हो गए, ईमान ही नहीं ला सके। उनको मालूम था लेकिन फिर भी उन्होंने हसद किया, उनको पता था ये अल्लाह के नबी हैं। आप देखें, हसद ने इंसानियत में शुरू से, आप देखें जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हसद ने क्या क्या लोगों को यानी कहाँ तक पहुंचा दिया, कितना गिरा दिया। सबसे पहले तो हसद शैतान ने किया आदम अलैहिस्सलाम से, और देखें अल्लाह ताला ने उसको धुतकार के रख दिया। फिर हसद किया काबिल ने हाबील से, तो देखें कातिल बन गया। फिर उसके बाद आज तो हसद बहुत कॉमन है। अब नेकी में तो शायद कम ही लोग हसद करते होंगे, लेकिन क्या है, दूसरे की नेमत बर्दाश्त नहीं होती। याद रखें, हसद ने यहूद को ईमान से महरूम कर दिया, शैतान को ये शैतान बनाई इसलिए, अल्लाह ताला की नजरों से गिरा दिया और लानत जदा कर दिया, और कैसा मकाम था फरिश्तों के पास, वहां से गिरा दिया हसद की वजह से। काबिल ने कत्ल कर दिया पहला हसद की वजह से। तो हसद कोई अच्छाई नहीं लेकर आता, हसद इतनी बुरी चीज है कि जला देता है इंसान को। वो जो जलन होती है ना, वो उसको बर्बाद कर देती है, उसको अल्लाह ताला की नजरों से भी गिरा देती है, उसको खैर से भी महरूम कर देती है। उसकी वजह से उसकी नेकियां भी बर्बाद हो जाती हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि हसद नेकियों को ऐसे खा लेता है जैसे आग लकड़ी को खा लेती है। लकड़ी क्या हो जाती? खाक हो जाती है। तो नेकियां बर्बाद हो जाती हैं अगर हसद दिल में आता है। हम अमल की बातों में ये लिखें कि और अपने यानी जायजा लें भी इसके अंदर कि मैंने देखना है कि जब किसी की नेमत मैं देखती हूँ ना, मसलन किसी का बच्चा बड़ा अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया, उसको बड़ा लायक है, वो कहीं आगे निकल गया, या किसी का बड़ा अच्छा घर देख लेती हूँ, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली है, कि कोई किसी की बड़ी तारीफें हो रही हैं, वो बड़ा आगे निकल गया है, वो लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, अच्छा किसी को बड़ी शोहरत मिल गई है, किसी की प्रमोशन हो गई है, और वो भी मेरे जैसा ही था, इसको क्या इतनी ये सब मिल। अब देखा करें, इसको चेक करें, अपना थर्मामीटर अपने पास रखें, या जैसे अब थर्मामीटर से आप फीवर चेक करते हैं, आप टेम्परेचर नहीं, आप हसद को भी चेक करें, हसद का मीटर रखें अपने पास। अब मेरे दिल में क्या आता है? अच्छा, अब मैंने देखा है तो अब मेरे दिल में क्या आता है, क्या सोच आती है, जरा उसको नोटिस किया करें, क्योंकि ये डायग्नोज करना भी तो बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर हसद है कि नहीं। अब क्या होता है, लो इसको ऐसे ही मिल गई, ये कौन सा इस काबिल था, इसका मतलब हसद है। और जब उससे वो नेमत छिन जाती है तो बड़ी अंदर ना जैसे एक अच्छा सा लगता है, ऐसे ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं कि हाँ ये बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अंदर अंदर से अच्छा महसूस होता है कि अच्छा यू मिल इससे चली गई, ये कौन सा इसको डिजर्व करता था, या अंदर सुकून सा पड़ गया था, हसद था इसका मतलब। किसी की अच्छी जगह शादी हो गई या किसी की बच्ची की शादी हो गई, मेरी बच्ची की तो हुई नहीं, और इसको इतना अच्छा मिल गया हस्बैंड, और इन्होंने बड़ी अच्छी शादी कर दी। अब ये क्या है? अंदर हसद आ रहा है। अब वो हसद ना ये है जो कि इंसान को जलाता है अंदर। फिर यहीं से क्या क्या निकलते हैं इसके इसके समझने के एक चीज है ना, उसके आगे फूल निकलते हैं, किसी चीज को एक बीज होता है ना, उसे गुलाब का बीज है, उसे गुलाब आगे निकलेंगे, उसका पौधा है, गुलाब ही निकलेगा, मोती से मोती। हसद से क्या निकलता है? गीबत, चुगलियां, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ताने देना, तंज करना, जहां बैठना उसकी बुराइयां शुरू कर देना। इसका मतलब अंदर हसद था ना, उसे ये आगे निकली हैं चीजें, वो अंदर असल में आपने डायग्नोज नहीं किया कि बीमारी हसद की थी, और फिर आगे उससे ये सारे उसके ही पेश खैमा, उसका उसी की नतीजे हैं, उसके रिजल्ट्स हैं जो आगे आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं ऐसे ही गीबत हो रही है, ऐसे नहीं हो रही, वो हसद चैन ही नहीं देने देना। अब किसी ना किसी तरह मैं इसको, और तो कुछ कर नहीं सकते, मार नहीं सकते उसको, क्या नहीं कर सकते उसको, हाथ से तो नहीं कुछ कर सकते, जुबान से ही उसको ईजा देने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए मिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद है, जिससे हसद किया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर साहिब नेमत हसद किया जाता है, जिसके पास कोई नेमत होती कोई ना कोई होता है जो उसे हसद करना शुरू जाता है। तो इसीलिए ये पढ़ने को कहा गया ना, उसके लिए क्या इलाज है? अगर आपको लगता है कि मेरे पास नेमत है, मैं कोई मेरे से हसद कर रहा है या कर सकता है, हम तो नहीं पता चला सकते ना, कोई ऊपर ऊपर तारीफें कर रहा हूँ जी बहुत मुबारक हो, अब अंदर कितना उसको हसद है वो तो नहीं हम जान सकते। तो फिर ये सूरतें इसीलिए पढ़ने को कहा गया ना, ये अपनी हिफाजत खुद कर लें, ठीक है, और क्या करें, फाफू वस्फाहू, बस आप माफ कर दें और दरगुजर करें। अब उस वक्त मुसलमानों को भी कहा गया, अब ये हसद की वजह से पता नहीं क्या क्या करते थे, डिफरेंट चालें चलते थे, लोगों को भी भड़काते थे, मुसलमानों के अंदर भी कन्फ्यूजन्स पैदा करते थे कि वो दीन को अपने छोड़ दें। उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुसलमानों को कहा गया तुम माफ करो पर जाने दो, दरगुजर करो, अपनी सारी एनर्जी इसमें ना लगाओ, हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, हत्ता कि अल्लाह ताला का फैसला आ जाए। नहीं, अगर तुम इन्हीं चीजों के पीछे पड़े रहे, अब ये हमारे से हसद करते हैं, देखो ये ऐसे हैं, देखो ये साजिश कर रहे हैं, सारा वक्त अपना इसी में वेस्ट कर दोगे, तुम जाने दो, दरगुजर करो, सफा पलट दो, इग्नोर करो इनको, हत्ता कि अल्लाह ताला का फैसला आ जाए। अल्लाह ताला का फैसला क्या? कि एक दिन मुसलमान गालिब आ जाएंगे, और फिर इनसे निबट भी सकते हैं, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और वाकई फिर इनको निकाल दिया गया था खैबर तक, इनको धकेल दिया गया। लेकिन फिलहाल के लिए मुसलमानों के पास मुशरिकीन मक्का का इतना बड़ा एक पॉइंट था कि उनके साथ अभी निबटना है, ना कि ये अब यहूदियों के साथ भी शुरू हो जाए जो मदीना के अंदर बैठे हुए थे। तो दो महाज तो नहीं खोल सकते थे इस वक्त के लिए, क्या है? अब ये नहीं कि तुम भी गुस्से में आ जाओ, पता चल गया ये हमसे हसद करते हैं, तो अब आप भी उसके बदले के अंदर अब आप कोई कार्रवाइयां शुरू कर दें, लड़ना शुरू कर दें, नहीं। और इसी से हमें अमल की बात क्या पता चली कि अपना वक्त, अपना दिमाग, अपनी एफर्ट्स अब इसमें नहीं लगा देनी कि आपको अगर पता चल गया है मेरे से कोई हसद कर रहा है, अब उसके आप पीछे पड़ गए। अच्छा ये ऐसे कर रहा है, हाय अब ये नजर ना लगा दे मेरे बच्चों को, हाय अब ऐसे ना हो जाए, अब ये ना हो जाए, अब सारा वक्त आपके दिमाग में यही चलता जा रहा है, तो आप प्रोडक्टिव काम कैसे करेंगे फिर? अब ये ना मुझे ऐसे देख ले, अब इनसे कट ऑफ कर दो, अब फलाने को ऐसे कर दो, लीव देम, छोड़ दे उनको, और आप खुद अपनी हिफाजत का इंतजाम करें। आप क्या, आपको पता है कि आजकल जरासीम फैले हुए हैं, तो आप अपनी हिफाजत का इंतजाम करते हैं, मास्क पहनते हैं अपने, कोई वैक्सीन लगाते हैं आप, ये करते हैं, या फिर जर्म से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जाने एक तो कि किसके अंदर हसद है किसके अंदर नहीं, पहले तो मैं इसे, हाँ मुझे लगता है फलां मेरे हसद करती है, फलां मेरी दोस्त है ना उसको बड़ी जलन होती, आप छोड़ दें, उनका मामला उनके साथ है, आप अपनी हिफाजत का इंतजाम करें और दरकुसर करें, ठीक है? और जो हसद हमारे अंदर आ रहा है किसी के लिए, तो अब हम क्या करें? एक तो पहले दूसरों की जिंदगियों में झांकना बंद कर दें, ये हमारे लिए अमल की बात है। कोई जरूरत नहीं देखने की कौन क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या उसकी हो गया, लेकिन कई चीजें छुप नहीं सकती, मसलन किसी के बेबी हो गया और दूसरे के पास औलाद नहीं है, या उसके बेटा हो गया, मेरे पास तो बेटा नहीं है, तो मैं आप क्या करूं? अब उसके साथ हंसा शुरू हो गया, लो इसके पास क्यों हो गया, हाय हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमारा तो नहीं, नहीं। अब वो दूसरा छुपा नहीं सकता इसको, अब क्या है फिर, अपनी जो नेमतें आपके पास हैं उनके ऊपर नजर करें ना, ये देखें मुझे तो अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ, मुझे भी तो अल्लाह ताला ने दिया हुआ, और वो ही अल्लाह जिसने उसको दिया, हस हासिद जो होता है ना, इसलिए उसके ऊपर इतना गुस्सा किया गया कि हासिद अल्लाह ताला की तकसीम पे राजी नहीं है, यानी उसको दूसरे को अल्लाह ताला ने दिया ना, और जलन मुझे हो रही है, तो इसका मतलब मैं इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हूं कि अल्लाह ताला ने उसको दे दिया, तो मैंने इतराज किस पे किया, वो खुद तो नहीं ले सकता था, चाहे कोई माल है, तरक्की है, या उसकी बच्चे या बच्ची की शादी हो गई है, वो खुद तो नहीं कर सकता था, अल्लाह ताला ही है ना जिसने उसको ये खैर दी। अब मुझे क्या बुरा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने क्यों दी उसको ये, तो मैंने इतराज किस पे किया, अल्लाह ताला के ऊपर, तो ये बहुत बुरी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पिछली उम्मतों की, तुम्हारे अंदर भी तुम में पिछली उम्मतों की बीमारी चल के आएगी, वो जो क्या है, हसद और बुख्स, पिछली उम्मतों में था ना इनके अंदर था, और आज मुसलमानों में कितना कॉमन है, बहुत ज्यादा, कि किसी की बर्दाश्त नहीं होती कि इसको खैर क्यों मिल गई, ये हसद है कि ये नेमत ना पसंद करना उसके, और उसके पास ना रहे नेमत, ये बस चाहना, अल्लाह उसका जवाल चाहना, उसका छिन जाना चाहना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये फरमाया आपस में बुग्ज ना रखो, ना कता ताल्लुक करो। अब कोई लोग ये सोचते हैं वो मेरे से हसद करता, बस कता ताल्लुक, अब मैंने इसे बात ही नहीं कर, ना हसद करो, ना पीठ पीछे गइबत करो, ऐ अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी जो तशरीफ लाए थे मस्जिद में, उनके बारे में फरमाया था ना कि ये जन्नती हैं, तो बाद में पता क्या चला उनकी क्या सिफत थी, वही उन्होंने कहा मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है कि बहुत कोई मेरा कोई खास कोई अमल करता हूँ, बस ये है कि मैं किसी मुसलमान के मुतल्लिक ना अपने दिल में कोई कीना नहीं रखता, यानी किसी ने कि कोई भलाई मिल रही, कोई कीना नहीं, कीने से ही तो हसद जन्म लेता है ना, इल फीलिंग्स पहले आती हैं, तो एक जगह आता है अल्लाह ताला फरमाता है हासिद मेरी नेमत का दुश्मन है, मेरे फैसले से नाराज है, और बंदों में मेरी तकसीम पे खुश नहीं, यानी ये अल्लाह ताला का फैसला था कि उसने उसको तरक्की दे दी, उसको माल दे दिया, उसको ही अच्छा घर मिल गया, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप अल्लाह ताला के फैसले से नाराज है। ये अपने आप को समझाया करें कि मैं किस पे इतराज कर रही हूं, मुझे अल्लाह ताला का डिसीजन पसंद नहीं। इब्ने सीरीन ने फरमाया कि मैंने किसी पर भी कभी दुनिया के कामों में हसद नहीं किया, क्योंकि या तो वो जन्नती होगा तो मैं उसके किसी दुनियावी काम में हसद क्यों करूं, वो तो जन्नती है जबकि वो जन्नत की तरफ जा रहा है, और अगर वो जहन्नमी है तो मुझे उसके दुनियावी काम पे क्या हसद करूं जबकि वो जहन्नुम में अंडा पोने वाला है। तो इसलिए हसद एक बहुत बुरी बीमारी है और हमें सबको इस चीज से बहुत बचने की जरूरत है। देखिए, कोई हमसे हसद करे उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अपनी हिफाजत का इंतजाम करें, लेकिन हम अपनी नेकियां ना कहीं तबाह बर्बाद कर दें। हम इतनी मुश्किल से कोई नेकी के काम करते हैं, पहले ही हमारे पास कुछ नहीं है ज्यादा, लेकिन अगर वो भी हमारा हसद की वजह से जल के राख हो गया, कयामत के दिन कुछ भी नहीं है, और आमालनामे में पता चला हसद बहुत करती थी, बर्दाश्त नहीं होता था इससे, तो फिर क्या होगा, फिर हम किधर जाएंगे। हसद से किसी और का नुकसान तो बाद में होगा, हमारा अपना नुकसान होता है, दीन का भी दुनिया का भी। इसलिए कि दीन में तो ठीक नेकियां ही खत्म हो गई, और दुनियावी नुकसान क्या, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, और वो फेस पे भी आ जाता है, इंसान का फेस भी फिर ऐसा ही हो जाता है। आप खूबसूरत लगना चाहते ना, एक आपको मैं राज बताती हूँ उसका, या आप बेशक आजमा के देख लीजिए, अपने दिल को साफ कर लें लोगों से, और आप हर एक के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें, आप वो ग्लो अपने चेहरे पे देखेंगे जो किसी दुनिया के किसी चीजें, क्रीम्स और लोशंस और इनसे नहीं आएगी, आपके चेहरे के ऊपर वो नूर आ जाएगा जो अंदर होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है बाहर, और जब जलने कुड़ने वाला कोई शख्स हो ना तो उसके चेहरे पे ये एक अजीब सी ऐसी कराहत नुमा चीज होती है, चेहरा करख्त हो जाता है। तो अगर आप खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, ये खूबसूरती वो है जो क्रीम्स लगा के मेकअप करके होती है, एक नेचुरल अल्लाह ताला आपके चेहरे के ऊपर एक नूर डाल देता है, ये जो भी देखता है ना उसको अच्छा लगता है, और ऐसे लोग जहां जाते हैं महसूस हो जाता है कि ये लोग बड़े खैर वाले लोग हैं, लोग उनकी तरफ खींचते हैं, और कम में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं लेकिन हैं अभी दुनिया में, और पता चल जाता है उनका। और एक वो लोग होते हैं हर एक से इतराज, फलाना ऐसे, फलाना ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, उसने ऐसे, उसने ये किया, उसे आप देखेंगे यहां गंदगी आपके अंदर है, इसको निकाल दें, स्टॉप इट, आपके लोगों पे इतराज करना, फला ये, हर एक की गंदगी नजर आ रही, क्यों, कहीं ये तो नहीं कि हसद है हमारे अंदर, कीने तो भरे ही हुए हैं, उनसे आगे हसद निकल रहा है। नहीं, मैं तो किसी से हसद नहीं करती जी, आपको क्या पता, बीमारी तो आपने डायग्नोज ही नहीं कर पाए, तो ये कीने हसद में बदलते हैं, कीनों को छोड़ दें, किसी को क्या मिला है उसे छिन जाए, इसे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं मिल जाना, बस चैन आ जाएगा उस वक्त जब उससे छिन जाए, बस क्यों, मुझे मैं भी अल्लाह ताला से मांगू, उससे तो अल्लाह ताला मुझे उससे भी बढ़ के चीज दे दे, और हो सकता है वो, आप तो दूसरे का जाहिर देख रहे होते ना, आपको क्या पता वो एक चीज उसके पास है लेकिन किसी और चीज में वो आजमाइश में है, हम नहीं देखते ये बात, लेकिन ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड, हमें हमेशा लगता है वो तो बड़े मजे में रह रहे हैं, वो तो बड़े ऐसे हैं, उनके पास तो सारा कुछ है, उसको तो कोई भी तकलीफ नहीं, नहीं नहीं उसको तो कुछ नहीं, आपको क्या पता, आप क्या जाने वो किस चीज से गुजर रहा है वो इंसान, हम नहीं जानते, हम सिर्फ जाहिर जाहिर को देख के फैसला कर देते हैं। इसलिए इंसानियत का जो खैरख्वाह होता है ना, आप देखेंगे कि वो इंसान हमेशा खुद भी सुकून में रहता है और उसके चेहरा भी पुर नूर रहता है, और जो हर वक्त जलते कुड़ते सड़ते रहते हैं उनके चेहरे के ऊपर भी वो कालक आ जाती है, रंग काला होना नहीं है, ये एक बदनुमाई है। जो उनके चेहरे पे आ जाती है, चाहे वो कितने ही गोरे हों कितने ही क्या हों, एक करख्तगी आ जाती है। मुझे बेशक आप इसको आजमा के देख लीजिए, बस वो करके देखें आप, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, वो जिसको जो चाहे दे उसकी मर्जी, जिसको चाहे अता करे जिसको चाहे नहीं दे। हम सोचते हैं कि बस हमारी मर्जी से हर एक को जो चीज मिलनी चाहिए, उनको ये था इन अरबों में क्यों नबुवत आ गई। अल्लाह ताला जिसको चाहे जो दे वो कादिर है इस बात पर। तो तुम्हें क्या कहा गया, आपको नसीहत बताई गई। देखे मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ ये नहीं बताया गया कि ये मुश्किल है, ये एक डिजीज है, आगे उसका हल भी बताया गया कि आपने करना क्या है, आपने दरगुजर करना, ठीक है, अपने आप को वेस्ट ना करें इन चीजों के पीछे। और वैसे ही आपने नहीं हो जाना कि जैसे वो हैं तो अच्छा आजकल सारे ही ये करते हैं तो हम भी अब कीने पालना शुरू कर दें। और वस्फाहू में देखे ना, वस्फाहू इतनी प्यारी चीज है, क्योंकि वस्फाहू में ये है कि जिसका कसूर है ना उसको कभी बताना जिताना भी नहीं, ये भी नहीं कहना पता है मुझे कि तुम्हारे अंदर कितना हसद है, ठीक है मैंने तुम्हें बस माफ कर दिया अल्लाह की खातिर, ये भी नहीं कहना। बस वो बस ऐसे दरगुजर करना कि कभी दूसरे को एहसास ही नहीं होने दे, ना कोई माथे पे बल ना 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 उसको ताना दे के एहसान जिता के, और उसको कहना जी अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने तो ठीक है माफी नहीं मांगी लेकिन ठीक है मैंने कहा फिर चलो मैं ही माफ कर देती, नहीं। बड़ी खूबसूरती है, एक है माफ कर देना और उसको दूसरे को जिता देना, एक है वस्फ़ाहू, बस छोड़ दो ना जाने दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल इसमें अगर हम देखें और सहाबा कराम को भी देखें, उन्होंने कैसे माफ किए, उन्होंने कैसे जाने दिया, कितनी बर्दाश्त है कितना तहम्मुल है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबुवत मिली है ये कोई उनका कसूर थोड़ी है, अल्लाह ताला ने उनको चुना, अल्लाह ताला ने उनके ये अता फरमाई नेमत। अब इसके अंदर उनकी दुश्मनी करना शुरू कर देना, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। अब आपको पता भी है कि ये हसद करते हैं और कुरान ने बता दिया, लेकिन उसके बाद देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, ये नहीं किया कि अब हम भी इनसे हसद शुरू करते हैं। आरिदानिल जाहिलीन, कुरान हमें क्या बताता है, ये राज करो जाहिलों से, इनको नहीं पता। और तुम क्या करो, किस चीज में अपना दिमाग अपना ध्यान अपनी एफर्ट्स लगाओ, ये नहीं अपना ट्रैक छोड़ के बस इन्हीं एक्टिविटीज में अब सरगर्म हो जाओ। तुम कायम करो नमाज, तुम अदा करो जकात, डोंट लूज योर ट्रैक कि दूसरों के पास क्या है, अब हम खोजने बैठे में सारा वक्त हम सोशल मीडिया पे यही चेक करते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, अब उसने क्या ले लिया, अब उसने क्या पहन लिया, अब उस वो किधर जाता है। एक तो लोगों को भी अपनी इतनी नुमाइश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कितने लोग हसद करने वाले बैठे हैं, ये भी अपनी नेमतों को एक ही हिफाजत का एक जरिया है कि आप अपनी नेमतों को इतने इश्तेहार लगाने की जरूरत नहीं कि हर जगह पोस्ट करते फिरें। और यहाँ पे बता दिया गया कि अब अगर आप इन्हीं की साजिशों को सोचने में कि कौन मेरे से हसद कर रहा है, किसने मुझे नजर लगा दी है, किसने मुझे क्या किया, इसी के अंदर पड़ गए तो आप तो अपने काम भूल जाएंगे। तो आप अपना ध्यान ना नेकियों में लगाएं, या तुम नमाज कायम करो, तुम जकात दो, और नमाज अल्लाह ताला का हक कि उसके आगे खड़े होकर, और जकात इंसानों का हक है कि इंसानों के साथ भी भलाई और अल्लाह ताला की जनाब में भी आगे आजी, ठीक है। वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो भी तुम आगे भेजते हो अपने नफ्सों के लिए भेजते हो अपने लिए करते हो, जो भी नेकी तुम कर रहे हो ना उसका फायदा तुम्हें ही मिलना है। जो भी तुम भेजते हो मिन खैरिन नेकी में से तजीदू इंदल्लाह, तुम उसको पालोगे अल्लाह के पास, यानी तुमने उसको अल्लाह तला के पास एक अकाउंट है तुम्हारा, तुमने वहां पे जमा करा दिया। आप बैंक में जब पैसा जमा कराते हैं आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, क्यों, आप होता है घर में अगर रखूंगी कैश कोई चोरी हो सकती है, लेकिन मैं जाके पराए लोगों के पास बैंक में जमा कराती हूं लेकिन मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, क्यों। वो तो मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ कि मेरा पैसा यहाँ पे है ना तो महफूज है। क्या हम अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करते हैं कि मेरी नेकी उसके पास जो है वो महफूज है, वो कहीं नहीं जाया होती? अगर वाकई मैंने इखलास के साथ किया, सिर्फ उसकी खातिर किया ना और सुन्नत तरीके से किया, वो बिल्कुल जाया नहीं होगी। बिलीव इट, ट्रस्ट करें अल्लाह ताला के पास। वो ऐसे ही नहीं है कि अच्छा मैं ये कर तो रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं अब कुछ इसका मिलना भी है कि नहीं मिलना। अगर वाकई अल्लाह ताला की खातिर की है, जरूर कबूल होगी, जरूर उसके पास रखी होगी। अगर मैंने अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनसे अपनी नेकी जाया कर देता इंसान, अगर मैंने वो नहीं किया, एहसान जिता के, रियाकारी करके, बाद में कुछ और ताना दे के किसी को, इस तरह से नेकियां जाया हो जाती हैं तो। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो ट्रस्ट करें, कहीं नहीं गई, अल्लाह ताला ने अपने पास हिफाजत से रख लिए। एक डॉलर भी दिया है, अतः कि देखें आपने, सुबहान अल्लाह, एक चूंटी थी पानी में, देखी वो डूब रही है, आपने उसको पत्ता आगे किया, वो उसके ऊपर चढ़ गई, आपने उसको लाके किनारे पे रख दिया। अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ये भी एक नेकी है तो इसको कबूल कर लेना, वो नेकी भी आपकी काउंट होगी, वो नेकी भी छोटी ना समझे, मिसकाला जर्रातिन भी वहां पे तुल जाना, एक जर्रे के बराबर नेकी, जरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कहते हैं। आपने मुस्कुरा के किसी को देखा, हमेशा मुस्कुरा के देखते हैं, लोगों के साथ तेवरी चढ़ा के नहीं रखते, बल्कि मुस्कुराना कितना मुश्किल है, मुस्कुरा के रखा, अपने दिल को साफ करा, वो तो खैर बहुत ही बड़ी नेकी है, मगर हम इसको कुछ इतना शायद ना बड़ा समझते हो, मेरे दिल को कौन सा किसी ने देखा है, मैं चाहे इसमें गंद भर के रखूं, हम वही चीजों को साफ सुथरा और अच्छा करते हैं जो हमें लगता है कि लोगों ने देखनी है। जब लोगों ने देखना हो तो अच्छे कपड़े भी पहने हैं, लोगों ने आना है तो घर की भी सफाई हो रही है, लोगों ने देखना है तो चीजें उसके मुताबिक, यानी जो 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 चीजें लोगों ने देखनी होती है ना, हम उसके ऊपर बड़ा यानी उसको बड़ा अच्छा रखते हैं, लेकिन जो लोगों ने ना देखनी हो, हम उसको जैसा मर्जी गंद मंद है कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देख लेना, हम किसी ने आना हो मेरे घर तो फिर बड़े बहुत अच्छे कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, ऐसी बात नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि सिर्फ इस खातिर कि लोगों ने देखना है, हम कितना एहतमाम करते हैं, हमारी नेकियां अल्लाह ताला देख रहा है, हम लोगों की तो इतनी परवाह करें, और जिस चीज को अल्लाह ताला ने देखना है, हमारे दिल अल्लाह ताला देख रहा है। हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, कि तुम्हारी शक्ल कितनी खूबसूरत है, तुम कितनी यंग लगती हो, कितने तुम्हारे फेस कितने मतलब रिंकल्स कितने और कितने फ्रेश है तुम्हारी स्किन, ये नहीं देखना, जिसके ऊपर सारी मेहनतें हम करते, और तुम्हारे पास कितना माल है ये भी नहीं देखना, तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, उसने तो तुम्हारे आमाल देखने हैं, तुम्हारे दिल देखने हैं, नियतें देखनी है, तो अल्लाह ताला इन चीजों को देखता है, वो उनको खूबसूरत बनाओ जो तुम आगे भेजते हो अपनी जानों के लिए, वो अपने लिए ही कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं, मुस्कुरा के देखा था तो अपने लिए नेकी की है, तुमने आगे भेजा है ना, ये जो नेकियां भी इंसान कर रहा है वो आगे जा रही हैं, वो एक अकाउंट में जमा होती जा रही हैं, उनको पालोगे अल्लाह के पास। कभी कभी शैतान इंसान को इस तरह से भी डिस्करेज करता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या होगा, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी को कभी हकीर ना जानो, छोटी से छोटी नेकी है ना इसको मामूली ना समझा करें, क्या फर्क पड़ता है, और गुनाह को भी ये ना समझ के उससे क्या फर्क पड़ता है, और वो कर ना ले, बाद में तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं, छोटा सा ही तो है, इसको भी ऐसे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नेकी को भी ऐसे ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे क्या होगा। अगर मेरे पास टाइम है एक आयत ही सिर्फ पढ़ने का, सिर्फ एक आयत, मेरे पास 1 मिनट है सिर्फ, एक आयत पढ़ने से क्या होगा, आराम से ही बैठूंगी, फिर आराम से ही पढ़ूंगी, फिर होगा तो दो चार तो बंदा पढ़े ना, एक से क्या फर्क पड़ता, नहीं, उसे एक को ही पढ़ लो, इस वक्त आपको इतना वक्त मिला ना, वो ही पढ़ लो, आपको क्या पता कल को वक्त मिले भी या नहीं मिले, जो आप 2 घंटे का इंतजार कर रही हैं जब मैंने पूरा पारा ही पढ़ना है। नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास इतना सा टाइम है ना, इतने के अंदर ही मैं ये जिक्र कर लेती हूँ। 3 दफा ही सुबहान अल्लाह बोल सकती हूँ, 3 दफा ही बोल लूँ, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता कौन सी मेरी नेकी मुझे कयामत के दिन पार लगवा दे, कौन सी मेरी नेकी हो जो मेरे नेकियों के पलड़े को भारी कर दे। कभी हकीर ना समझे, कभी छोटी ना समझे, कभी मामूली ना समझे। किसी को पानी ही पिला दिया है, किसी के लिए दरवाजा ही खोल दिया है, किसी को प्लेट ही पकड़ा दी है, किसी को टिश्यू चाहिए था उसको टिश्यू ही दे दिया, तो टिश्यू से क्या होता है? नहीं नहीं होता है, ये भी आपकी नेकी है। लेकिन इसलिए अगर आपने की है कि ये भी मेरी नेकी हो जाए, पता नहीं कौन सी नेकी काम आ जाए। इसलिए नहीं कि ओ ये तो बड़े मर्तबे वाला है, देखो ना ये मैं इसको टिश्यू दे रही हूँ, इसके आगे नंबर बनाने के लिए। ये नंबर बनाने वाला जो चक्कर है ना, वो कोई भी नेकी काम नहीं आने, जो आप नंबर बनाने के लिए, तो देखो उसकी आदत के लिए चले जाओ, वो आयादत करने के लिए आप गए, सुबह को गए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं, शाम को गए सुबह तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करें, एक बीमार की आदत आपने की है। लेकिन अगर इसलिए ओ नहीं अब देखो कल को काम पड़ जाएगा, ओ नहीं ये भी मेरी आदत के लिए उस वक्त आई थी, ये भी हमारे घर आई थी, इसने भी बड़ी मेरी हेल्प की थी, चलो जी इतने। नहीं ठीक है, आप एहसान का बदला एहसान तो ज़रूर होना चाहिए, हमेशा ही दूसरे को एक्नॉलेज करना चाहिए कि उसने मेरे साथ नेकी की थी, मैं भी नेकी करूं। लेकिन इस वजह से ना करें कि मैंने इसलिए करनी है, इस वजह से करें कि ये अल्लाह मेरी नेकी ये काम आ जाए, पता नहीं कयामत के दिन कौन सी नेकी मेरे काम आ जाए, मुझे बहुत ज़रूरत है। छोटी छोटी नेकियां ही होंगी तो ये हो सकता है यही पहाड़ बन जाए, जैसे छोटे छोटे गुनाह भी मिलके पहाड़ बन जाते, तो नेकियां भी छोटियों को हकीर ना समझे और बड़ी के इंतजार में छोटियों को छोड़ ना दें कि इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन ही बड़ी करनी है मैंने, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। नहीं $1 ही है मेरे पास, $1 ही मैंने डाल दिया बॉक्स में, मुस्कुरा के देखना इतना ही कर सकती हूँ, इतना ही कर लिया। किसी का हाल पूछ सकती हूँ, उसका हाल ही पूछ लिया, चलो उसकी हेल्प नहीं कर सकते तो उसका हाल ही पूछ लिया, उसे अच्छी बात ही कर ली, वो भी एक नेकी हो गई। काउंट योर गुड डीड्स, अपनी गुड डीड्स को ऐसे ही रखें जैसे कि बच्चा एक छोटे वो अपने उसको कहते हैं मनी बॉक्स, अब पहले जमानों के अंदर होता था गल्ला उसको कहते थे, उसमें छोटे छोटे कॉइन्स भी डालते रहते हैं, एक दिन उसको तोड़ते हैं तो उसमें क्या बहुत सारे पैसे निकल आते हैं, ये इसके अंदर डालते रहें, अल्लाह ताला के अकाउंट में महफूज हैं, कभी शैतान आपको इस वजह से नेकी से ना गाफिल करे, नेकी के रास्ते में ना रुकावट बने कि ये तो छोटी सी है इससे क्या होगा। नहीं इससे भी होगा, छोटी छोटी अल्लाह मैं तो इतनी छोटी हूं, तू मेरी छोटी छोटी ही नेकियां कबूल कर लेना, ये मेरे पास कोई बड़ी तो है ही नहीं, क्या पता ये यही नेकियां हमें पार लगा दे। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो तुम अमल करते हो उसको देखने वाला है। देखें ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, अब एक दफा आपको रिवाइज करने का मौका मिल गया, एक दिन आप बैठे आपने कहा चलो एक आयत ही कर लेती हूँ, ये जाया नहीं है वक्त, ये जो आप बैठे हुए ये जाया नहीं है, ये जो आप टेस्ट करते हैं ये जाया नहीं है। देखिए खुश दिली से नेकियां किया करें, आगे आ रही है बात मोहसिनीन की तो आपको पता चलेगा, नेकियों को ना इस तरह मारे बांधे का ना करें, खुश दिली से करें, ये अल्लाह ताला के पास जा रही हैं, ये वो हैं जो चीज़ें मैं हमेशा मैं इस चीज़ की मिसाल देती रहती हूँ कि अल्लाह ताला को हमारी नेकियों की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे एक बच्चा है ना, वो उल्टी सीधी कोई लकीरें लगा के उसको इतनी ही आती हैं, छोटा 2-3 साल का बच्चा उसको इतना ही आता है, वो उसके ऊपर ऐसे स्क्रिबल करके ले आता है एक पेपर के ऊपर और आपको लाके दिखाता है, आप इतने खुश होते हैं, आपको क्या ज़रूरत उसकी, ना आपको उसकी इस चीज़ की ज़रूरत, ना आपको वो इन लकीरों से कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको कितना उसको प्यार करते हैं उसकी एफर्ट देखते हुए। नहीं इसने एक एफर्ट की और जितना ये कर सकता था उतना ही इसने करके दिखा दिया, तो हम बहुत छोटे हैं, हमारी एफर्ट्स भी छोटी छोटी ही हैं, अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है इनकी, लेकिन उस बच्चे की तरह हम बस ले जाके दिखा रहे हैं ये हमारी ठीकरियां हैं कि अल्लाह हमारे पास बस यही है, तो इसी को कबूल कर लेना, ठीक है। तो इसलिए जिस जगह पे भी आपको मौका मिल जाए ना, मौके की तलाश में रहें। और ये याद रखें, वमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, खैरिन के अंदर छोटी बड़ी, मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है, लफ्ज़ नकीरा है। किसी भी भलाई को आपको मौका मिल जाए उसको जाने ना दें। ताजी दुआ इंद अल्लाह, तो पालोगे इसको अल्लाह के पास, जिस दिन अमालनामा खोलोगे कितनी खुशी होगी। ये देखो, ये मेरी मुस्कुराहटें, ये मेरा एक सुभान अल्लाह कहना, ये मेरा किसी के लिए एक पेंसिल दे देना मसलन, ये मेरा किसी को थोड़ा सा एक हेल्प का एक जुमला बोल देना, किसी का हाल पूछ लेना। और इसमें कोई ये नहीं है कि किसी मुसलमान के साथ ही आप नेकी करोगे तो नेकी है, मुसलमान के साथ तो ये हाल है कि किसी का आपने दिल भी खुश कर दिया तो वो भी एक नेकी, अल्लाह ताला के महबूब बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह की नाफरमानी के काम में नहीं, ये उसको दिल खुश कर दिया कि वो उसको ये है कि आप इस तरह के बन सवर के घूमे तो आप वैसे ही घूमने लगे क्योंकि उसका दिल खुश हो जाता है, ये नहीं। तो इन अल्लाह बिमा तअमलुना बसीर, अल्लाह ताला देख रहा है वो, और बसीर उसकी उसका देखना ऐसा नहीं जैसे हम देखते हैं, हम तो जाहिर को सिर्फ देखते हैं ना, वो जाहिर व बातिन हर चीज का अंदर बाहर सब जानता है, नियतों को भी जानता है किस वजह से किया था। वकालू, और उन्होंने कहा, किन्होंने, अहले किताब की बात हो रही, लन यदखुल अल जन्नत, नहीं दाखिल होगा, और लन से क्या पता चला, हरगिज नहीं, यानी इतना जो एक देखें, एक है ना नो और एक है नेवर, एक है नेवर एवर, अब इसमें शिद्दत कितनी आ गई। वो कहते हैं हरगिज भी नहीं दाखिल होना जन्नत में, किसी ने नहीं होना, इल्ला मगर वो जो यहूदी या ईसाई होगा बस वो दाखिल हो सकते हैं, यानी कोई और जा ही नहीं सकता। तो इससे क्या पता चला, कहा ना हो, जो भी होगा, जो भी रहा, यहूदी या ईसाई, इस्लाम तो नया नया आया है, हम तो पहले से ही हैं स्पेशल लोग, हमने ही यानी जन्नत में जाना है, बाकी किसी ने नहीं जाना। तो ये क्या वाकई उनका दावा ठीक था? फरमाया तिलका अमानी यू, ये उनकी विशुअल थिंकिंग है, कुछ भी सोचते रहो, कुछ भी, कोई क्या है मसलन है को कोई अपनी तौर पे ही कुछ बना ले, वो उससे वो चीज वैसी नहीं हो जाती, अल्लाह का कानून नहीं वो बन जाता कि कितना दावा कर रहे हैं, कितनी यानी कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं हरगिज नहीं दाखिल होगा, इससे पता चलता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट थे इस बात पे। और इस पे कभी भी आप इन बातों में ना आना, क्योंकि कभी अगर कोई बड़ा कॉन्फिडेंटली कोई चीज कह रहा होता है ना, हम उस बात में आ जाते हैं कि नहीं देखो ना आखिर वो ऐसे कैसे कह सकता है, वो तो इतनी, कई लोग इतनी वसूख से कोई बात कहते हैं, बंदा दूसरी दफा सोचना ही शुरू हो जाता है कि पता नहीं शायद सच्ची कह रहा हो, ऐसे नहीं। आप ये देखें कि उसके पास दलील क्या है, कुल हातू बुरहाना को, तुम लेकर आओ अपनी दलील। इस्लाम में क्या है, एक रूल, यहां से आपको अमल की बात पता चली कि किसी के कहने के ऊपर हमने नहीं भरोसा करने ना, कि कोई कॉन्फिडेंटली कितना क्लेम कर रहा है किसी बात का, कोई कितनी ब्लंटली कह रहा है, कितनी जोर दार तरीके से कह रहा है, और कॉन्फिडेंस कितना उसके अंदर, तो ऐसे ही तो नहीं कह रहा होगा, ये नहीं कहना, हमने हमने कहना है दलील लेके आओ, चाहे कोई कितनी उससे बात कह रहा है, कितनी खूबसूरत बात कर रहा है, कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। आजकल लोगों को देखा गया कि वो सिर्फ ये देखते हैं धुआंधार तकरीरें कौन कर रहा है, वो बड़ा अच्छा जी बोलता है, अब बड़ा अच्छा बोलता है तो क्या वो उसकी बात मान ली जाए, ये नहीं है तरीका। लोग ऐसे ही भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे भी, अजी इसकी सुन ले देखा कितना अच्छा बोलता है, बोलने से क्या फर्क पड़ता है, आप ये देखो कि वो दलील से भी बात करता है या नहीं, उसकी बात वैसी है जिस जैसी कुरान और हदीस में या नहीं, या अपनी तौर पे ही उसने कहा है जी, उसने अपने तौर पे यहां से वहां चीजें मिला ली, अच्छा ये भी याजूज माजूज है, वो भी दज्जाल है, वो भी फला ऐसे है, खुद ही इसकी कोई दलील है, कुछ भी नहीं। तो इस्लाम में किसी का कितना ही जोरदार तरीके से बात करना कोई माने नहीं रखता, या कोई नोशन बहुत पॉपुलर है आजकल कोई चीज, लोगों लोग बहुत उसको सुनते हैं, वो भी नहीं कोई मैटर करता। किसके पास कितने बड़े दावे हैं वो भी नहीं मैटर करता। क्या चीज मैटर करती है? किस चीज को आपने मानना है? दलील को। दलील है तो जरूर बात माने, और दलील भी कौन सी? जो कुरान और हदीस से। ऐसे नहीं कि जो बस बातें हो। तो ये बात को जरूर समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बातें करेंगे जिनके पास कोई दलील नहीं होती, लेकिन बस अच्छी है ना बात तो क्या हो, फर्क पड़ गया? नहीं, अच्छी बात होना कोई काफी नहीं। कोई कहता है 11वीं कर लो, कोई कहता है मिलाद कर लो, कोई कहता है शबरात है, कोई कहता है मतलब बड़े बड़े खूबसूरत नाम रखे हुए। कोई कहता है 40वें करो, कोई कहता है 11वीं करो, कोई कहता है कुल कर लो, कोई बरसियां मना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नहीं तो इसमें क्या हर्ज है, हम तो बस सवाब ही पहुंचा रहे हैं। किसी ने कहा जी दरूद पढ़ लो इतना, और उसके बाद आप किसी को हदिया कर लो ये दरूद। पर पढ़ा इसने, हदिया वो किसी को भी दे रहा है, इसकी क्या दलील है कि उसको ये हदिया मिल जाएगा और अल्लाह ताला उसके लिए सवाब लिख देगा? पढ़ा आपने या सवाब उसको मिल जाए? इतने कुरान पढ़ लो फिर उसको बख्श दो, उसको सवाब मिल जाएगा, ये कहाँ से दलील? इसकी कोई सॉलिड दलील है? बुरहान कौन सी होती है सॉलिड दलील? जैसे उनके लिए कहा गया ना, इस तरह ही हमें भी ये बात समझा दी गई कि सॉलिड, जब तक कोई दलील ना लेकर आए तब तक आप उस चीज को नहीं कह सकते कि ये क्रेडिबल है। जैसे उनकी बात बड़ी लगती तो बहुत वो है कि क्योंकि इतने जोरावर तरीके से कह रहे, लन यदखुल जन्नत, लेकिन दलील लेकर आओ। तुम्हारी विशफुल थिंकिंग हो सकती है, 11, 20 या पत्नी 11 बीबियों की कहानियां वो पढ़ लो बैठ के, तो आपका काम हो जाएगा। वही वो बीबियों की कहानियां पढ़ने से क्या कैसे काम हो सकता है? कोई अक्ल भी समझ नहीं आती कि इनकी अक्ल को हो क्या गया, बिल्कुल ही मत मारी जाती है। सारी औरतें बैठ जाती हैं बीबियों की कहानियां पढ़ी जा रही, क्योंकि फिर सारा मेरा काम है जहालत, नहीं तो और क्या है। रजब की और बिदतें हैं, मुहर्रम की और बिदतें हैं, हर एक महीने की बिदतें बनाई हैं। तो बिदतें करने वाले उनका भी तो क्या है कि बस अच्छी चीज लगती है, पहली रकात में इतनी दफा ये पढ़ना है, दूसरी रकात में इतनी दफा ये पढ़ना है, तो इतने लाख आपको सवाब मिल जाएंगे। भाई इसकी क्या दलील है इतने लाख सवाब मिल जाएंगे? कहीं देखे ना, तो जिसने सवाब देना है उसने बताया कि मैंने इतना सवाब देना? अल्लाह ताला ने सवाब देना है ना, मैंने आपने तो नहीं देना। दुरूदे तंजीना पढ़ लो, उसके शुरू के अंदर इतना कुछ लिखा होता है, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। दुरूदे ताज पढ़ लो, लखी पढ़ लो, फलां पढ़ लो, फलां पढ़ लो, इससे ये हो जाएंगे आपकी चीजें। आइए, आप कहां से, इसकी कोई दलील है आपके पास? तो इन ये चीजें ख्वाहिशात से नहीं होती कि मेरा दिल करता है तो ये चीज हो जाए, नहीं। हाँ तू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो। उनको भी कहा गया, बटी ठीक है आप कहते हो ना जन्नत में हमने ही जाना है, कोई और ने नहीं जाना, तो फिर भाई उसके दलील तो लेकर आओ। कहीं आपकी किताब में ये लिखा हुआ हो, कहीं आपके पैगंबर ने ये बताया हो, कहीं ये या हमें हमारे कुरान में है, हदीस में है, लेकिन लोगों ने चीजें बनाई नहीं और लोग अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं, और कोई नहीं कहता कि कोई दलील लेकर आओ, सब मानने को पहले ही तैयार है, बस पता चल जाए सही। कहीं व्हाट्सएप पे आ गया, आप रमजान की इतला लोगों को देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जो सबसे पहले इतला देगा वो क्या अल्लाह ताला माफ करेगी? हदीस ही बना के बता देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अस्तग़फिरुल्लाह। झूठ भी इंसान अल्लाह डरे तो सही कि किसके ऊपर बात कर रहा है। तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में जाने का इसका मतलब क्राइटेरिया ये नहीं है कि कोई किसी स्पेशल ग्रुप से है, यहूदी है, नसरानी है, कोई कहे जी हम आप उम्मते मुस्लिमा कहे, हम जी उम्मते मुस्लिमा है ना इसलिए हम तो जन्नत में हमने ही जाना है, और नहीं कोई जा सकता, क्योंकि क्यों? क्योंकि हम तो उम्मते मुस्लिमा में से। तो क्या आपके पास भी कोई इस दावे का कोई सबूत है? यहां से हमें तो पता चल रहा है कि नस्ली ताल्लुक, इलाकाई ताल्लुक, किसी ग्रोह में से होना ताल्लुक, कोई किसी खास नसब से होना ताल्लुक, ये हक नहीं आपको देता कि आप जन्नत में चले जाएंगे। किसी नबी का बेटा होना, किसी नबी का बाप होना, किसी कोई सैयद फैमिली से है, ये आपको नहीं देता हक कि आपने जन्नत में चले जाना। जन्नत में जाने का फिर किसका है? आ देखिए, आज इवन ग्रोहों के लिए कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएंगे, इनके तो 72 है ना, 72 है, मेरी तो उम्मत के 73 हो जाएंगे। तो अब क्या है, हर फिरका कह रहा है हम ही जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, जिसको पूछ लो वो जन्नती है। अब इस क्लेम आप क्लेम तो करते हैं, लेकिन इस दावे की क्या है बुनियाद, दलील लेकर आए ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया, ये जो मेरे या मेरे सहाबा के तरीके के ऊपर होगा वही जन्नत पे जाएगा। लेकिन ना क्या लोग हैं कि अपना नाम सुन्नी रख लेने से आप सुन्नत पे चलने वाले तो नहीं हो जाते? मैंने अपना नाम सुन्नी रख दिया, सुन्नत का मुझे एक का भी नहीं पता। हाँ, मैंने अपना नाम मुसलमान कहा, मुसलमान इससे थोड़ी हो जाता है कि आप इस रिलीजन के खाने में इस्लाम लिख दें, या आपका नाम फातिमा है, आयशा है, तो जी मैं हम तो बस जन्नती हैं। आगे क्या है, क्या इतना कहने के ऊपर कोई जन्नत में चला जाएगा? क्या कुरान आपका यही कहता है कि आप मुसलमान घर में चूके पैदा हो गए इसलिए आप जन्नती हो गए? इसमें मेरा क्या कमाल है कि जी मैं मुसलमान घराने में पैदा हो गया? अब तुम जो मर्जी अमल करो, तुम्हें खुली छुट्टी मिल गई क्योंकि तुम मुस्लिम घराने पैदा हो। तुम्हारा नाम देखो कितना खूबसूरत, मुसलमानों वाला। कोई अपना नाम मोहम्मद भी रख दे, कोई अपना नाम अब्दुल्ला भी कह दे, तो उससे वो जन्नत में नहीं चला जाता। ये क्राइटेरिया नहीं है, यहां पे बता दिया गया किसी खास ग्रोह नाम होना, चाहे आप सुन्नी रख ले, चाहे आप अपने आप को कहे, जैसे वो कहते थे हम यहूदी हैं, आप कहे मैं जी सुन्नी हूं, सुन्नत का कुछ भी नहीं पता, सुन्नत पे कभी चल के नहीं देखा, बिदतों में आप पड़े हुए, तो फिर कैसे आप सुन्नी हो? आपने कभी देखा भी कि ये सुन्नत से काम साबित भी है कि नहीं? सुन्नी सुन्नी कहने से सुन्नी तो नहीं हो जाते, मुसलमान कहने से कोई मुसलमान तो नहीं हो जाता, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि मुसलमान घराने में पैदा हुआ, जबकि उसको इस्लाम का कुछ भी नहीं पता। कोई इससे भी नहीं जन्नत के अंदर चला जाएगा कि जो बस वो एक अपना नाम रख ले। तो फिर क्या चीज है जो फिर जन्नत में ले जाने वाली है? वो भी आगे बता दी गई, बला क्यों नहीं, बल्कि मन असलामा। ये तुम्हारी बात रॉन्ग है कि तुम कहो कि यहूदी जाएंगे, ईसाई जाएंगे, कौन फिर जाएगा? मन असलमा वजहहू लिल्लाह, जिसने सबमिट कर दिया अपने चेहरे को अल्लाह के लिए। अब वजह के बहुत सारे माने, चेहरा भी है और जात भी है, अपना पूरा वजूद भी। असल में वजह कहते हैं उस चीज को जो सबसे पहले कोई सामने आता है, जो सबसे पहले जो चीज उसकी सामने आती है वो वजह है, ठीक है। रजा भी इसका माना किया जाता है, जैसे कहते हैं ली वजहिल्लाह, कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। डायरेक्शन का भी माना आता है, तो जिसने अपना आप सुपुर्द कर दिया, अपनी जात को सुपुर्द कर दिया अल्लाह के। सुपुर्द कर दिया का मतलब क्या, असलामा का मतलब क्या, यानी अपने आप को झुका दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपनी विल को, अपनी मर्जी को, अपनी जिंदगी को, अपने आप को अल्लाह ताला के आगे बिछा दिया। या अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरी मर्जी कुछ नहीं, ये जो मैं ये नहीं है कुछ भी, ए अल्लाह सब कुछ है, तू ही है, ए अल्लाह मैंने अपना आप तेरे आगे झुका दिया। जैसे तू कहे चलो मैं चल पड़ा, तू कहे बैठो मैं बैठ गया, तू कहे माल लगाओ मैंने लगा दिया, तू कहे इससे बात करो मैंने कर ली, तू इससे कहे कि इससे बात करना बंद कर दो मैंने बात बंद कर दी, तू कहे इसके साथ ताल्लुक रखो मैंने ताल्लुक रखा, तूने कहा इससे ताल्लुक तोड़ दो मैंने तोड़ दिया। यानी सारी जिंदगी सबमिशन वाली जिंदगी, ये नहीं कि मैं समझती हूं ये, मुझे तो ये लगता है, मैं तो नहीं ये मानती, ये नहीं, अल्लाह की विल को अपनी विल के ऊपर रखना है। वो है जिसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया, आगे बिछा दिया, ये मेरी विल कोई चीज नहीं है, है अल्लाह जो तूने कहा ना वो ही हक है, या अल्लाह जो तूने मेरे से चाहा वो ही सही है, मेरी क्या मिजाज, मैं क्या चीज हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। है कि यानी अपने आप को झुका दें, मैं छोड़ दें, अपनी सोच को, अपने अमल को, अपनी बातों को, सबको अंडर करें अल्लाह ताला की बात के, तब है वो जिसने अपना आप झुका दिया। देखिए ना, आज हर एक ग्रोह दूसरे के ऊपर फतवे दे रहा है, वो काफिर, फलाना काफिर, फलां काफिर, फलां काफिर। हम ही हैं जो सबसे ऊपर हैं, हम ही हैं जो बख्शे बख्शाए हैं, हम ही हैं जो जन्नती हैं। नहीं, अब देख लो इस क्राइटेरिया के ऊपर अपने आप को रख के, कि क्या तुमने अपने आप को झुका दिया अल्लाह ताला के आगे। ऐसे आज के दौर में तो सबसे बड़ा जो फितना है वो ख्वाहिश नफ्स का है। आगे आएगा बात, ख्वाहिश नफ्स पे नहीं चलना। आज दुनिया और दीन ये नहीं है कि लोग दुनिया के पीछे भाग रहे, आज तो ख्वाहिश नफ्स है एक तरफ और एक तरफ अल्लाह की बात है। मेरा तो दिल ये करता है, मैं तो ये चाहती हूं, और ख्वाहिश नफ्स को ही अपना माबूद बनाया हुआ, वो ही दीन है। दुनिया में आप तो यहूदियत नसरानियत भी कम ही रह गई है, सबका यूनिवर्सल दीन क्या है? ख्वाहिश नफ्स। क्योंकि यहूदियत नसरानियत भी नहीं, वो कहती चीजें जो आज हो रही हैं, जिनको लिजिट कर दिया गया, जिनको कह दिया गया ये भी ठीक है, आप कौमे लूत के अमल करो तो वो भी सही है, वो भी जायज है, आप मर्द मर्द शादी कर रहे हैं वो भी ठीक है, कोई भी यहूदियत नसरानियत में भी नहीं है, लेकिन हाँ ख्वाहिश नफ्स के दीन में जरूर है ये बता दिया गया कि नहीं, ये इससे काम नहीं बनेगा कि तुम किस ग्रो से अपने आप को क्लेम करो, तुम्हें क्या है अपना आप झुका देना है अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे, तब है जन्नत। वह हुआ मोहसिन। अब तुम अपना नाम कुछ भी रख लो, अगर आपने अपने आप को झुकाया ही नहीं अल्लाह ताला के आगे, अपनी गर्दन नहीं झुका दी, अपने आप को हवाले नहीं कर दिया, मेरा रब मुझे जिधर को कहे, वो कहते ना कि ऐसे हो जाओ जैसे मुर्दा है। क्या होता है मुर्दा को, कभी आपने उसल दे के देखा? उसको अब बाजू उठाओ, यहां रखो, वहां रखो, टर्न दो, उसने नहीं कहना तू मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, नहीं यहाँ पे रखो, हाय मेरी कंघी ज्यादा तुमने सख्ती से क्यों कर दी है, अरे मुझे ठंडा पानी क्यों मेरे ऊपर डाल रहे हो, गर्म क्यों कर रहे हो, वो नहीं, कुछ भी नहीं कहता। जिधर आपके हाथों में है वो, आप जिधर उसको मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बस खामोश है, वैसे ही मुड़ता जाता है। इस तरह हो जाओ ये अल्लाह ताला के आगे, कि अपने आप को बिल्कुल ऐसे कि या अल्लाह तेरा हुक्म ही मेरी जात पे चलेगा। ये 5-6 फुट के इंसान का जिस्म क्या चीज है, इसके ऊपर भी अल्लाह ताला का हुक्म नहीं हम नाफिज कर सकते, तो और क्या दुनिया में करेंगे। दुनिया को तो बहुत हम भाषण देते हैं, बहुत तकरीरें कर सकते हैं, बड़ा आसान है, अपनी जात भी हमसे कंट्रोल नहीं होती, कि हम अपने आप के ऊपर ही अल्लाह का कानून लागू कर लें, कि जो उसने फरमाया वैसे होते चले जाए, अपने आप को मोल्ड कर लें उसके अंदर, इतने नरम पड़ जाए। लेकिन दावे हमारे सबके, इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व माती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा तो नमाज भी कुर्बानी भी, मेरा जीना मरना मेरे अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए, करके तो दिखाएं। वैसे वाकई है जो वो पसंद करे वही मेरी पसंद, जो वो हुक्म दे वही मेरे सर आंखों पे, ऐसा इंसान तो फिर वो जो भी करता है वो अल्लाह ताला की खातिर करता है। वह हुआ मोहसिन, और वो मोहसिन है, मोहसिन हुसन से है, हासीन मीन हुसन क्या होता है, खूबसूरती, यानी उसका सारा काम खूबसूरत तरीके से किया गया हो, यानी जो नेकियां है ना वो उसकी बड़ी उसने खूबसूरती से की, मतलब है कि बड़ी मोहब्बत के साथ दिल लगा के, ये जान छुड़ाने वाली नहीं। देखिए हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, हम बच्चे को पानी का कहे ना लाने का, और वो पैर मारता हुआ जा रहा है और हूं करता हुआ जाए, और लाके पानी का गिलास भी लाके जोर से दे के मारा उसने हमारे सामने, और गिलास भी साफ नहीं किया, और ऐसे हम कहते हैं हमें नहीं ऐसा काम चाहिए। लेकिन जब हम अल्लाह ताला के जनाब में कोई नेकी करने लगते, तो वो खूबसूरत नहीं होती, वो भी ऐसी होती है कि बस उसमें इतना नखरा, हाय हाय क्यों करना पड़ गया ये टेस्ट की तैयारी, एक तो टेस्ट पता नहीं क्यों आ जाता है। क्या कुरान के साथ ही वक्त लगा रहे हो ना, क्या जाया नहीं हो रहा? यही तो है जो बच जाना है, यही तो वो नेकियां हैं जो आपकी डिपॉजिट हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर इतनी फूं फां। जानते हैं कयामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में फरमाया ना, यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनाती यस आ नूरुहुम बैना अईदीहिम व बि अईमानिहिम। कयामत के दिन तुम देखोगे मोमिन मर्दों और औरतों का नूर ऐसा होगा उनके सामने और दाएं भाग रहा होगा, उनके साथ साथ उनका नूर जा रहा होगा। ये जो ये नूर कौन सा है? बैना अईदीहिम व बि अईमानिहिम, उनके सामने क्या है? वो नूर है जो उनका ईमान का नूर था। और उनके दाएं तरफ कौन सा? उनकी नेकियां हैं, उनका भी नूर होगा उस दिन, नेकियां नूर बन जाएंगी। तजिदू इंद अल्लाह, ये जाया नहीं जाती, ये नूर बन जाएंगी उस दिन जब बहुत अंधेरा होगा, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, जिसके पास नूर होगा बस वो अपने नूर में चलेगा। कब्र में भी ये नेकियां नूर बन जाएंगी जो अंधेरी जगह है। हशर में भी जब उठेगा तो ये नेकियां इंसान के लिए उसके साथ होंगी, मैं तेरा नेक अमल हूं। वो कहेगा तू कौन चीज है, तू मैं तेरा नेक अमल हूं जो दुनिया में तू करता था। और ये अगर ऐसा हुआ, मारे बांधे का इस तरह का बस बोल बोल के बुड़बुड़ाते रहे सारा दिन, जैसे मुसीबत ही पड़ गई है, कुछ करना पड़ गया, तो ये कौन से इंसान के लेवल की नेकियां हैं? हम खुश नहीं होते ऐसी चीजों के ऊपर जबकि हमको कुछ भी डिजर्व नहीं करते। इन कोई हमारे लिए, हमारा एम्प्लॉय ऐसा काम कर दे, नौकर हमारे ऐसा काम करें, हमारे बच्चा हमारे लिए ऐसा काम कर दे, हमारा दिल इतना तंग होता है कि हम कहते हैं हमें नहीं ऐसी चाहिए, ले जाओ अपने पास ही रखो। खुद तो हम इतना मिजाज रखते हैं और अल्लाह ताला के लिए हम ऐसी नेकियां कर रहे हैं, करते हैं। हाय नमाज का टाइम हो गया फिर से, जैसे जान ही निकल गई। सर्दियों में तो हाय अल्लाह एक नमाज अभी पढ़ी नहीं, दूसरा फिर टाइम हो गया। ये क्या तरीका है? नमाज तो आंखों की ठंडक थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको महबूब रखा। मेरी नमाज नमाज मेरी आंखों की ठंडक है ये फरमाया। वो तो इंतजार करते थे, जो एक नमाज से दूसरी के इंतजार करे वो तो अल्लाह ताला के अर्श पाएगा उस दिन। उसका दिल मस्जिदों में लगता था, वो एक के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता था। और हम नेकियां करते वक्त भी हाय वाय हाय वाय, किसी को खाना भेजना, हाय कह तो दिया था मैंने, इतना मुश्किल है ना ये काम, कितनी बातें करते हैं। कहते हैं एक जगह मैं पढ़ रही थी कि सुभान अल्लाह, एक बंदा सो के भी नेकी कमा लेता है और एक मस्जिद में जाके भी नेकी नहीं कमा पाता। कैसे? उन्होंने कहा कि देखो जो एक बंदा उठा और वो उसको टाइम का नहीं पता चला ना, वो मस्जिद चला गया, अभी ओहो यहाँ पे आया हूँ अब पता चला, नमाज तो 15 मिनट बाद थी, हाय हाय मैं पता नहीं क्यों आ गया, पता नहीं मैंने क्यों नहीं देखा, पता नहीं मैं क्यों निकल आया, ओहो उसका जाया सारा नेकी जाया हो गई, हालांकि वो मस्जिद में बैठा हुआ है, उसकी नेकी जाया हो गई, वो यानी उसको इसका कोई अजर नहीं मिल रहा, वो अल्लाह के घर में बैठा हुआ है फिर भी उसका कोई अजर नहीं लिखा जा रहा, वो उसको बड़ा नागवार गुजर रहा है ना कि मैं क्यों आ गया, और थोड़ी देर सो जाता, 10 मिनट और मेरी आंख लग जाती, हाय हाय कोसता ही जा रहा है, किसी ने नहीं मुझे बताया। और दूसरा वो सोया हुआ है, उसने अलार्म लगाया था, उसका अलार्म ही नहीं बजा, उसने जाना था वो सोया रह गया, उठा तो उसको इतना अफसोस हो रहा है, मैंने अलार्म भी लगाया पता नहीं क्या हो गया, मैं उठ नहीं सका, उसको उस नेकी का अजर मिल गया। सुभान अल्लाह, तो ये जो मुंह से हम बोलते हैं ना, ये जो हमारे दिल में तंगी आती है ना, हमारी नेकी को किसी काम का नहीं रहने देती, इसको रॉटन कर देती है, इसको बेकार कर देती है। ऐसी नेकियां मत करें जो इतनी आपके लिए मुश्किल है कि आप रो रो के कर रहे हैं, इनका कोई फायदा नहीं, ये आप अल्लाह ताला की जनाब में पेश कर रहे हैं। वैसे ही हमारी तो इतनी बेकार है कि वो वैसे ही किसी बहुत खास क्वालिटी की नहीं होती, लेकिन ऊपर से हम दिल तंग भी जब करते हैं और बुड़बुड़ाते हैं, बोलते हैं, और अफसोस ही हमें रहता है कि क्यों ही हमें करनी पड़ गई। सोचे फिर वो नेकी किस रंग में आएगी उस दिन, कैसी बोसीदा होगी। तो जो एहसान के लेवल पर करता है, खूबसूरत करके करता है, ये मेरे अल्लाह ताला को पहुंचनी है। एहसान के लेवल इबादत में भी होता है और एहसान का लेवल लोगों के साथ नेकी करने में, अल्लाह ताला के यहाँ भी जो इबादत के काम है, जैसे नमाज है, रोजा है, उसको भी एहसान के लेवल पे बेस्ट। जैसे आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप कई लोग कोर्स करेंगे, आप सब कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन कई लोग इसको एहसान के लेवल पे करेंगे, और कई मारे बंद एक आए कि मुसीबत ही पड़ गई हमें, पता नहीं किसी ने जैसे गले में ही कोई फंदा डाल दिया। पता है आपको, सर्टिफिकेट शायद सबको एक बराबर ही, जाहिर है वो तो कागज है, एक एक जितना ही मिलेगा, लेकिन कई के अजर कितने बड़े होंगे, और कई शायद अपने अजर जाया करते हैं, अल्लाह ना करे। तो आज से ही अपने आप को इसमें डालें कि मैंने नेकी के कामों में ना ऐसे तेवरियां नहीं चढ़ानी, मैंने इस तरह से करके नहीं काम करना, मैं मेहमान को भी घर बुलाऊं तो उसके ऊपर भी मेहमान आ गए, हाय मुसीबत, हाय क्यों आ गए, इनको तो बस यही, आप क्या मुझे काम करना पड़ गया। वही आपको नेकी मिलनी थी, करना तो आपने फिर भी था, लेकिन अब आपको कोई इसका अजर नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका काम की देखिए क्वालिटी क्या है, अल्लाह ताला ने क्वालिटी ही तो देखनी है, और एहसान का लेवल तो बेस्ट लेवल है। तो जब अल्लाह ताला के जनाब में कोई इबादत करते हैं तो फिर कैसा होना चाहिए, जैसे आपको हदीस जिब्राइल का पता होगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा था एहसान क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे है कि जैसे आप देखिए, आप ये तस्वुर करें कि मैं अल्लाह को देख रही हूँ, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये अल्लाह ताला मेरे सामने है, ऐसे मैं नमाज पढ़ रही हूँ, ऐसे मैं सज्दे कर रही हूँ, ऐसे मैं रोजे रख रही हूँ, ऐसे मैं जगह, लेकिन अगर इसको नहीं पहुंच सकते तो क्या करो, ये समझो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये आसान है जरा, लेकिन जब कोई देख रहा हो तो हम कितने फिर कॉन्शियस होके एक चीज करते हैं, लिखा होता है कैमरे की आंख देख रही है, यहाँ पे कैमरे लगे हुए, तो फिर कितने कॉन्शियस होते हैं, जब अल्लाह ताला देख रहा हो, अल्लाह बिमा तअमलून बसीर, तो फिर कितना अच्छा वो लेवल का काम होना चाहिए, वो चाहे नमाज हो चाहे कोई भी। और बंदों के साथ एहसान के लेवल के ऊपर नेकी करना क्या है, हक से ज्यादा दे दो, इतना उसका हक नहीं बनता था, मिसाल के तौर पे मसलन पैसे देने में, मसलन उजरत आप दे रहे हैं, कोई मजदूर है या कुछ है, आप उसको $20 देने थे, आपने 25 दे दिए, ये एहसान है, ठीक है, हक से ज्यादा देना, उसका हक तो 20 का ही बनता था, और ये हर चीज में, सिर्फ पैसों में नहीं, हर चीज में देख रहे हैं, उसका हक कितना बनता था। मुझे किसी का पता है कि वो बंदा हर एक को चाहता है, कोई बात नहीं इसको ज्यादा दे दो, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, इसे मैंने अमीर तो नहीं हो जाना, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही चला जाएगा इसके पास। अल्लाह ताला को मोहसिनीन बहुत पसंद है, उनसे वो मोहब्बत करता है। तो जो मोहसिन होता है, फलहु अजरु इंद रब्बिही, उसका तो अजर उसके रब के पास है, महफूज है उसका अजर, वो है जो जन्नत में जाने वाले, वो दो चीजें बता दी गई ना, मन असलम वजहहु लिल्लाह वह हुआ मोहसिन, एक ने झुकाया अपने आप को, लेकिन वो मोहसिन नहीं है, उसने कोई अच्छे लेवल का काम नहीं किया, झुका दिया। कई चीजें हम करते हैं लेकिन हम बहुत दिल तंगी के साथ करते हैं, मतलब हिजाब ही लेना, अब कितना दिल तंग है, और हर वक्त उनको देखते रहते हैं, इनके कितने मजे हैं ना, हाँ कितना अच्छा फिर रहे हैं, कितनी आजादी से फिर, मुझे तो हिजाब ही लेना पड़ता है। आपने अपने आप को झुकाया तो सही, लेकिन आपने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में कोई काम किया तो सही, लेकिन एहसान के लेवल का नहीं है। तो जो ऐसा करेगा उसका अजर उसके रब के पास है। वला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, खौफ हमेशा फ्यूचर का होता है और गम पास्ट का होता है, खौफ वो है जिसको हम कहते हैं ना एंग्जाइटी, मुझे एंग्जाइटी होती है फ्यूचर की कि क्या होगा क्या होगा, उनको खौफ भी नहीं होगा कि क्या होगा अब हमारे साथ, अल्लाह ताला उनसे खौफ दूर कर देगा कयामत के दिन, और उनको गम भी नहीं होगा, गम पीछे का होता है, हाय मैंने क्या कर बैठी, हाय क्यों हो गया, इस कोई गम भी नहीं होगा, अल्लाह ताला खौफ और गम से जिस जो आजाद हो गया वो कितना खुश रहेगा ना। यही दो चीजें होती हैं, या तो हमें फ्यूचर की एंग्जाइटीज होती हैं या पास्ट के गम होते हैं, जो जिंदगी को बेचैन रखते हैं। वकालत यहूद लैसत नसारा अला शय, वकालत नसारा लैसत यहूद अला शय। अच्छा, ये अब पीछे बात आई थी ना कि उन्होंने कहा कि हम जन्नत में कोई नहीं जाएगा मगर यहूदी या नसरानी। अब उसी की समझ लें बात, एक है कि यहूदी यहूदियों को ही समझते हैं कि हम ही हैं जो ठीक है। यहूदी कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, नसारा कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे। यहां पे कह दिया कि वो कहते हैं कि ये तो बेसलेस है, इनका तो कोई दीन ही नहीं, और नसारा कहते हैं ये यहूदी हैं, इनका तो कुछ है ही नहीं, इनकी को तो कोई बुनियाद ही नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऊपर यानी क्रिटिसाइज करते हैं। और हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया हुम यतलून अल किताब, दोनों एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही घाट से दोनों पानी लेते हैं, लेकिन एक दूसरे को कहता है ये नहीं सही है, ये काफिर, दूसरा दूसरे को कहता है तू ये काफिर। हमारी नहीं तस्वीर नजर आ रही, हर एक फिरका कहता है ये तो कुछ है ही नहीं, ये सारे बस जहन्नमी है, मैं ही सीधे रास्ते पे हूं। कदाली का काला लदीना ला यालमुना मिथला कौलिहिम, इसी तरह कहा उन लोगों ने जिनको इल्म नहीं, मिथला कौली इनकी जैसी बात की। किसने कहा ला यालमुना, जो नहीं जानते। वो कौन थे? यहां पे मुशरिकीन मक्का की बात है। उन्होंने भी क्या बात कही, मिसला कौलीम, इनकी जैसी बात कही कि कोई और नहीं है, बस हम ही हम हैं, क्योंकि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे हैं। ईसाई कहते थे कि हम तो भाई ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, यहूदी तो वैसे ही अपने आप को बहुत ही चहीता समझते हैं, वो तो कहते हैं कि हम तो बड़े अल्लाह के चहीते हैं। हर ग्रोह जो उसके पास है, कुरान कहता है हर ग्रोह उसके ऊपर ही खुश है जो उसके पास है, और हर ग्रोह खुद को हक पे समझता है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं जरा इन डेप्थ जाके भी देखूं कि क्या वाकई ये ही वो है जो अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया दिया हुआ है हक पे होने का, हक यही है यानी। बस वो समझते कि हम इस ग्रुप से है ना, हमारा नाम यहूदी है तो इसलिए हम, जैसे कोई कहे कि हम फलां ग्रुप के हैं, अब कोई भी ग्रुप लगा ले, मुसलमानों में भी हम हनफी हैं ज्यादा, हम ठीक हैं। वो कहता है हम शाफी हैं, हम बस ठीक हैं, बाकी सारे ऐसे गलत हैं। कोई कहता है हम फलां ग्रुप से हैं, कोई कहता है फलां ग्रुप से, हम ही सही हैं बस। ऐसे नहीं होता, दीन इतना क्लियर है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तुम दो चीजों को पकड़ लो कभी गुमराह नहीं होगे, कुरान और हदीस, कुरान और मेरी सुन्नत, बस सुन्नत हदीस एक ही बात है। तो इन्हीं के नक्शे कदम पे आज हम चल रहे हैं ना, देख लें कैसे उनके जो जो चीजें उन्होंने की वही चीजें आज हम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी, मुशरिकी ने मक्का ने भी यही कहा, यानी हर एक ग्रुप उसके पास कोई ना कोई दलील ऐसी है कि अपने आप को खुद ही सेटिस्फाई कर लिया हुआ है कि चूंकि हम इस ग्रुप से हैं लिहाजा हम बख्शे बख्शाए हैं, हम जहन्नुम में तो जाएंगे नहीं, हम तो वो हैं जो कि चोजन वंस हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं। अब वो जो ला यालमून है वो कौन है, जिनके पास किताब का कोई इल्म नहीं था, उनके पास तो कोई किताब आई नहीं थी। अब कई लोग कहते हैं ये तो मौलवियों की बेकार बातें हैं, वो तो ऐसे हैं, इनको क्या पता है, ये तो पिछले जमानों की बातें हैं, हमें ही सब कुछ पता है, लिहाजा हम ही सही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और अहले नजरान के जब नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे तो आपके पास यहूदी उलमा भी आ गए, और आपस में ये झगड़ने लगे और एक दूसरे को कहने लगे कि तो ये कुछ नहीं है और वो कहते हम कुछ नहीं है। ये कहा जाता है उस मौके पे ये आयत उतरी। तो इसलिए हमें क्या बताया जा रहा है, ये सारी अमानी है, विशफुल थिंकिंग है कि बस हम सही हम सही। देख तो लो कि तुम सही वाकई हो भी या नहीं, वो तो जो एक दूसरे को कह रहे थे दोनों ही गलत हैं वो ये देख लें, और तीनों ही गलत हैं। कहा है ना शायर ने, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें। तो आज इस उम्मत ने कुफर के फतवे लगाने में तो सबसे तेज है ना, हर एक ने दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाए हैं और खुद को सबसे बड़ा मुसलमान समझते हैं। और जबकि किताब अल्लाह एक ही, दोनों सारे पढ़ रहे हैं, सारे जितने फिरके हैं वो कहते हैं हमारा ईमान किताब अल्लाह पे, लेकिन किताब अल्लाह को समझने के लिए क्या चाहिए? हदीस चाहिए, खुद अपने मन माने माने नहीं कर सकते। सहाबा ने कैसे इसको समझा, वो चाहिए, और वो भी मन माने माने करके जो मर्जी उसकी तफसीरें कर ली। फल्लाहु याकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, तो अल्लाह ताला इनके दरमियान फैसला करेगा क़यामत के दिन, जिसमें वो इख्तलाफ करते थे, इसलिए कि मानना किसी ने भी नहीं। आज भी देखें आप शिया सुन्नी या और भी जितने हैं, अब इख्तलाफी मसाइल जो हैं किसी ने भी नहीं मानना, 1400 साल से नहीं माने, तो अब कैसे मानेंगे? मानना नहीं है। हाँ, आपका काम क्या होता है, या आप उनको बता दें जरूर, उदउ इला सबीली रब्बी का बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आप बुलाएं हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ, खूबसूरत नसीहत के साथ उनको बता दें। जाहिर है किसी को भी चेंज करना उसका आसान नहीं होता, इसलिए ये ना कह दें काफिर 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 काफिर, फौरन मिलते ये भी काफिर वो भी काफिर, डंडा उठा लिया और पीछे पड़ गए। नहीं, उनको कुरान की तरफ बुलाएं, उनको हदीस की तरफ बुलाएं, उनको सही बात दलील के साथ बताएं, इसके लिए मोहब्बत के साथ आवाज करना जरूरी है, नरमी के साथ और दुआ करना। हम तो ये अपने मुसलमानों के लिए भी नहीं करते तो किसी और को क्या कहेंगे? इवन अपने घर वालों को भी हमने अगर गलत काम से रोक के भलाई की तरफ लाना है तो तब भी है, उदू इला सबीली रब्बी कबिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह के रास्ते की तरफ इस तरह बुलाया जाता है हिकमत के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। ये नहीं कि डंडा पकड़ के भागना शुरू कर दें किसी के पीछे। तो नसीहत ऐसी हो जो दिल में उतरने वाली हो, मौइज़तिल हसना वो नसीहत होती है, दिल में दूसरे के दिल के नरम करें, उसकी दिल तक पहुंचे, नफरतों से नहीं फैलाया जाता सही बात को। नफरत करेंगे और कुफर के फतवे देंगे और तुम ऐसे ऐसे और गालियां देंगे और दूसरे को आर दिलाएंगे, तो उसकी अना जागती है। जब आपने किसी की अना जगा दी ना, तो वो कभी भी नहीं मानेगा।